Awakening with Brahma Kumaris.
ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इन दिनों मन को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड मैटर्स में. अभी तक हमने बहुत सारी मेंटल इलनेसेस की बात कर ली है. अगर पिछली कड़ी को देखें तो स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात की थी, और ये समझ में आया कि ये एक हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न बन चुका है जिसको ब्रेक करने के लिए हम सबको एक साथ काम करने की जरूरत होगी. एक और बड़ा मुद्दा जो हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे दिख रहा है और जो कि बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, वो है वेट इश्यूज और बॉडी इमेज. चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के ही मन में एक इमेज है उनको लेकर, और उस इमेज तक पहुंचने की उनकी कोशिश रहती है, और उसमें कितने प्रोसेस से गुजरते हैं और कई सारी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. इन्हीं पर बात करेंगे. हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. आप दोनों का स्वागत. ओम शांति.
ओम शांति.
डॉक्टर साहब, कई सारे लाइफ के जो हमारे मुद्दे थे उनको तो हमने देखा कि कहां कहां वहां प्रॉब्लम आई तो एक मेंटल डिसऑर्डर का रूप धारण कर सकती है. आज जिस हम दौर में हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है. सो एक परफेक्ट इमेज जो मेरी है, जो मेरे मन में है, वो भी मैं प्राप्त कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन फिर उसके साथ जो जुड़ना और उसका जो स्ट्रेस कि मैं, और खासकर इस यंग एज में जो है, कैन इट लीड टू समथिंग यू नो मोर प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस आजकल यंगस्टर्स के पास होता है.
एक सच्चाई ये है कि चाहे आत्मा का कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन शरीर की डायमेंशन होती है, और हर किसी की डायमेंशन अलग अलग है. कोई पतला है, कोई थोड़ा सा पतले से ज्यादा है, कोई बहुत लंबा है, कोई नहीं है. उसको एक स्लॉट में फिक्स कर देना, क्योंकि वो व्यक्ति देखने में अच्छा लगता है या वो व्यक्ति पॉपुलर है, इसलिए मैं भी वैसा बन जाऊं, मैं भी वैसा बन जाऊं में कुछ जगहों पे पॉसिबिलिटी है. यानी आप अपना वेट एक खास लिमिट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी हाइट, अपनी लुक्स, अपनी बॉडी टाइप, उसको पूरी तरह से नहीं बदल सकते. जब आप किसी और की इमेज को रखकर अपनी बॉडी को उसी रूप में बनाना चाहते हैं, वहां पे दिक्कतें शुरू होती हैं. कई लोगों के मन में एक सो कॉल्ड परफेक्ट बॉडी इमेज है, और अगर उनकी इमेज उसमें फिट नहीं होती तो उन्हें इंटरनली कष्ट होता, और इसको हम बॉडी डिस्मॉर्फोबिक डिसऑर्डर बोलते हैं. जिसका मतलब यह है कि मैं जब अपने आप को शीशे में देखता हूं, मुझे अपना शरीर पसंद नहीं आता. सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द बॉडी आई एम लिविंग इन. और दिस हैपेंस डे इन डे आउट. हर समय जब आप देखते हैं, आपको वो व्यक्ति जो कि सामने शीशे में दिख रहा है वो पसंद नहीं आता, तो उसको बदलने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए नहीं, लेकिन उसको बदलने के लिए लोग एफर्ट करना शुरू करते हैं. कई बार ये प्रोसेस बचपन से ही शुरू हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिलीज के अंदर इस तरह की बातें बच्चों के साथ बहुत यंग एज पे शुरू हो जाती हैं कि देखो तुम्हारे फादर कितने टॉल, यंग, हैंडसम हैं, तो तुम्हें भी उनके जैसा बनना है. मम्मी कितनी यंग लुकिंग है, तो तुम्हें भी उनके जैसा बनना है. तो बच्चों में ये बातें मन के अंदर कई बार होनी शुरू हो जाती हैं, और उस इमेज को जीने के लिए वो कई बार एफर्ट करना शुरू हो जाते हैं. कई बार टेलीविजन पे या स्क्रीन के ऊपर आप जिन्हें देखते हैं वो बहुत पॉपुलर फिगर्स होती हैं, आप उनके जैसा बनना शुरू होते हैं. कुछ बच्चों में कई बार उन्हें अपने शरीर के साथ डिस्कम्फर्ट इसलिए भी होता है क्योंकि फिजिकल अब्यूज या मेंटल अब्यूज या खासतौर पे सेक्सुअल अब्यूज हुई, और वो उस शरीर के साथ कंफर्टेबल नहीं है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, और आज के समय में हम ये चीज देख रहे हैं, जब वो एडोलेसेंस में आते हैं, तो लड़कियों में ऑलमोस्ट 10 times मोर देन बॉयज बहुत पतले होने की इच्छा, टू द एक्सटेंट कि फिजिकली वो नॉर्मल नहीं रहे या उनके शरीर के प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मल नहीं रहे, या जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, यानी उस उम्र के लिए, उस हाइट के लिए जितना उनका एक एवरेज हेल्दी वेट होना चाहिए उससे वो बहुत कम होते हैं, और उस इमेज को बनाए रखने के लिए वो एफर्ट करते रहते हैं, यानी बहुत कम खाते हैं। और जब कम की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कि तीन के बजाय दो रोटी खाते हैं, खाते ही नहीं है। इतनी सी दाल, इतने से चावल, एक
एक बाइट
मूली का टुकड़ा, उसमें भी वो बाइट भी ओनली फ्रूट्स या थोड़ा सा सैलेड, या कई बार थोड़ा ज्यादा उनको लगता है तो वो खा चुके हैं तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं, कई बार वो पर्गेटिव्स लेने की कोशिश करते हैं ज्यादा, ताकि उनके शरीर से जो भी है वो निकल जाए। और उसी इमेज के साथ लगातार साइज जीरो हो, बहुत पतले कपड़ों में फिट हो, उसको जीने की कोशिश करते हैं। और लड़कियों में खास तौर पे ये प्रॉब्लम बॉयज से 10 गुना ज्यादा पाई जाती है, और ये फिर एक बहुत लंबा डिसऑर्डर हो सकती है। क्योंकि कुछ दिन चलने के बाद ये सिर्फ उनकी एनर्जी लेवल्स को कम नहीं करती, ये उनके जो हार्मोन्स हैं और शरीर की जो जरूरतें हैं जो ग्रोथ के समय में आमतौर पर चाहिए वो भी खराब हो जाती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर पड़ सकता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक स्टेज तक पहुंचने के बाद शरीर अपने आप को हील करने की कोशिश करता है तो वो दूसरी तरफ स्विंग हो जाता है, जिसको हम बुलीमिया कहते हैं, जिसमें कि वो माइंडलेस फिर ईटिंग होनी शुरू हो जाती है
और वो स्टोर करने लगता है,
और वो शरीर फिर उसको स्टोर करने लगता है ये सोच के कि थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्वेशन होगी, तो वो बहुत ज्यादा खाने शुरू कर देते हैं और फिर वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और ये एक प्रोसेस यो-यो जैसे कभी इस एक्सट्रीम पे कभी उस एक्सट्रीम पे चलना शुरू हो जाता है। बच्चों में कई बार जो क्रिटिकलनेस दूसरे बच्चों के द्वारा आती है, उन्हें कुछ कोई मोटा कहे, उन्हें कोई पतलू कहे, तो वो भी उनके मन पे घर कर जाती है, उस इमेज को भी वो बदलने की कोशिश करते हैं तो उसी के साथ जूझना शुरू कर देते हैं, और उससे उनकी जो नॉर्मल सोशलाइजेशन है या नॉर्मल पढ़ाई है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ वेट इश्यूज की अगर हम बात करें, खास तौर पे अगर अभी सिर्फ बच्चों की बात करें, क्योंकि यही चीजें बाद में होके एडल्ट्स में पहुंचती
है। एक्चुअली अगर इसको नहीं चेक किया तो आज जो हम एडल्ट्स में भी देख रहे हैं, इतनी कॉन्शियसनेस अपनी बॉडी इमेज और वेट को लेकर है, वो इसी का ही रिपरकशन नहीं है?
जो बचपन में सीखा और जिस चीज को बचपन में बढ़ावा मिला, उसी इमेज को आप बाद में जाके भी जीना चाहते हैं, लेकिन बाद की जरूरतें बदल जाती हैं। खास तौर पे अगर माँ बनती है कोई बच्ची, तो उसके लिए उसको कुछ खास चीजों की जरूरत है, और अगर उसके शरीर में उस तरह की प्रोटेक्शन है ही नहीं तो प्रॉब्लम होगी, और उससे उसके मन पे भी बहुत असर पड़ेगा। लेकिन हम एक बहुत बड़ा एपिडेमिक इस समय वो भी देख रहे हैं, जहां पे कि बड़ों को देखकर बच्चे माइंडलेसली ईट कर रहे हैं। सो ओबेसिटी नाउ इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम, और ओबेसिटी की वजह से जो और शरीर के दिक्कतें हैं वो तो शुरुआत हो ही रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है या चाइल्डहुड डायबिटीज है उसका आना है, लेकिन खासी तौर से मेंटल प्रॉब्लम्स उसकी वजह से जो बॉडी इमेज उनकी होनी चाहिए, जो हेल्थ उनकी होनी चाहिए, वो भी ठीक तरह से नहीं पनप पाती जितनी की एक हेल्दी ग्रोथ बच्चे की होनी चाहिए। और उसकी वजह से जो उसकी अपने आसपास के पीयर ग्रुप में फिटिंग है वो, या जो सही रूप से उसकी ग्रोथ है वो ठीक नहीं हो पाती, और उसका भी उनके मन पर और उनके सामाजिक जो रिलेशनशिप्स है उन पर बहुत असर पड़ता है, और यही बाद में जाके फिर और तरह की फिजिकल या साइकोसोमेटिक इलनेसेस को बढ़ावा देते हैं।
अगर हम अपनी आपकी पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो हमने जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात की, उसका जो रिपरकशन था, जो उसका साइड इफेक्ट था, चाहे वो हमने चाहे दवाई ले रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उसमें भी वेट गेन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो क्या कई बार बच्चा जब ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहा है या इसी एज में, वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि इट माइट बी यू नो रीजन की या इंडिकेशन की किसी मेंटल डिसऑर्डर का कारण भी हो सकता है, कोई डिप्रेशन का वजह हो सकती है या इस कारण होता जा रहा है, बिकॉज माइंडलेस ईटिंग, व्हाई
माइंडलेस ईटिंग? क्योंकि आप या तो डिस्ट्रैक्टेड है, सामने टेलीविजन चल रहा है या आप किसी गेम को खेल रहे हैं और साथ ही साथ बर्गर पड़ा हुआ है या पॉपकॉर्न्स पड़े हुए हैं या कोलाज पड़े हैं या कोई और कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हैं और वो साथ साथ आप लेते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स के अंदर भी अभी थोड़ी सी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, लेकिन समोसे और ब्रेड पकौड़ाज और गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा चलने वाले आइटमें हैं। बाहर जितनी भी चीज़ें मार्केट्स में खुल रही हैं सिर्फ बिक नहीं रही हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इंक्लूडिंग बाय वन गेट वन फ्री तरह की स्कीम्स जो हैं वो भी चल रही हैं। तो वो एज अ सोसाइटी हमने खाने को एज अ स्ट्रेस बस्टर इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो कि बड़े भी करते हैं और उस चीज को देख के बच्चे भी करते हैं। बट पर से सिर्फ वेट गेन होना या पर से सिर्फ ज्यादा खाना खाना वो एक, मैं नहीं कहूंगा कि मेंटल इलनेस है, लेकिन हाँ वो शायद कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रेस को जरूर दर्शाता है, जिसको कि कम करने का और कोई तरीका नहीं मिलता तो इस रूप में चला जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसकी वजह से जो हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सोशलाइज भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं, वो भी होना कम शुरू हो जाता है। उन्हीं बच्चों में ये भी देखा जाता है कि बुलिंग या बीइंग बुलेड भी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो ये एक अलग साइकिल है जो कि इसके साथ जुड़ जाता है,
एक विशेष सर्कल सा जो है उसमें हम पाते हैं अपने बच्चे को। जैसे शिवानी, हम कई सारे पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश की बात की है। अब आज अगर हमारे सामने एक बच्चा है जो किसी भी वजह से हमारे हमारे घर पे या हो गया है कि वो ओबिसिटी की तरफ बढ़ा है, सडनली मैं उसको कहूँ कि वो एक्सरसाइज करे और मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उसका इंटरेस्ट है एक्सरसाइज में, ना उसका इंटरेस्ट है वो हेल्दी खाना खिलाने में, खाने में, जो कि अब मैं कह रही हूँ कि वो हेल्दी है, पहले जो भी उसको आदत है। हाउ डू वी ब्रेक, बिकॉज वी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग कि ये लाइफस्टाइल ठीक नहीं है एंड इट कैन लीड टू एनी अदर प्रॉब्लम, सो व्हाट शुड बी द प्रोसेस नाउ, मतलब अगर उसको ब्रेक करवाना है।
आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा अपना बिलीफ सिस्टम। सी, हम हमेशा चाहते हैं हम उनकी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दें, उनके सोचने के तरीके, उनके खाने के तरीके, उनके जीवन जीने के तरीके, उनके व्यवहार, वी ऑलवेज वॉन्ट टू चेंज देम।
सोचने के तरीके पर नहीं जाते हैं, हम ये कहते हैं कि खाने का तरीका चेंज हो जाए।
आप, खाने का तरीका भी तो सोचने के तरीके से कनेक्टेड है ना, आपका बिलीफ सिस्टम खाने के बारे में क्या है। आज हमारा अपना बिलीफ सिस्टम खाने के बारे में क्या है कि कुछ खा लो, वी नॉट सेइंग क्या खा लो, वो किस तरह बना, कहाँ बना, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, हाइजीन वैल्यू क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उस खाने में जो इमोशनल एनर्जी है वो कौन सी है। नहीं, बस कहीं से भी मंगवाओ खा लो, एज लॉन्ग एज माई चाइल्ड हैज ईटन, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ मदर्स आर वर्किंग, ऑल दैट दे कैन डू इज कॉल अप एंड फाइंड आउट डिड यू ईट समथिंग, यू नो दैट्स ऑल दैट दे आर एबल टू डू। हम ये नहीं ध्यान रख रहे कि क्या खा रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कैसे और किसने बनाया। अन्न का मन पे असर, एक ये एक लाइन थी जो हम सुना करते थे, हमें इसकी पावर नहीं पता थी, लेकिन आफ्टर सीइंग द राजयोगी मेडिटेशन लाइफस्टाइल, ये लाइन में इतनी पावर है और ये लाइन हमारी लाइफ से इतनी डीपली कनेक्टेड है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखने की चीज है कि अन्न किसने बनाया, किस वाइब्रेशन से बनाया, उसको फिर जिसने खाया उस किस स्थिति में खाया। जैसे कहा टीवी देखते हुए खा रहे हैं, कई बार आपस में जैसे कहा डाइनिंग टेबल पे रात को मिले, फिर कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो गई तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए खा रहे हैं,
डांट पड़ती है तब खा रहे हैं, वो रो रहा होता है बच्चा तब, क्योंकि खाना है खाना है, ईट दिस ईट ग्रीन्स। आई हैव सीन
पेरेंट्स को डांट रहे हैं और साथ ही साथ खिला रहे हैं।
हाँ, डांट इसीलिए कि ग्रीन खाओ, वो बेचारा वो निगल रहा है बच्चा।
तो ये सारी के क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, बस खिला दो, वी नॉट सीइंग द होल थिंग इन हार्मनी, के तन मन इसका इंटीग्रेशन, अन्न जो हम खा रहे हैं ये सारी एनर्जीज कैसे कनेक्टेड है। और जैसे कहा कि वी वॉन्ट टू बी परफेक्ट, यू नो वी सेड एंड वेरी ब्यूटिफुल एज आई वॉज लिस्निंग, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो डॉक्टर अवधेश सेड वी फील के आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद द बॉडी आई हैव, लेकिन आई डोंट थिंक वी थिंक लाइक दैट, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद द बॉडी आई हैव, वी थिंक आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद माई सेल्फ, बिकॉज हमने अपने आप को ये बॉडी समझा। यही तो स्पिरिचुअल इनसाइट थी कि ये ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक गुड, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्फर्टेबल विद माई सेल्फ। अगर हम ऑब्सेस्ड हैं इस थॉट से के हाउ आई लुक, तो आई मे अटेन द परफेक्ट फिजिकल कॉस्ट्यूम बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद माई सेल्फ, क्योंकि मन शांत नहीं है, वो तो कॉन्स्टेंट एक सी. अगर आप वो अटेन भी कर लेते हो, जैसे कई बच्चों के अंदर ऑब्सेशन होता है क्लास में फर्स्ट आना, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है उस बात का कि मुझे फर्स्ट आना है, तो फर्स्ट आने के बाद स्ट्रेस खत्म नहीं होता, उसके बाद एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है फर्स्ट पोजिशन पे रहने का. तो ये जो ऑब्सेस्ड होगा अपना कॉस्ट्यूम फिजिकल बॉडी ऐसे होने चाहिए, फर्स्ट टू रीच देयर देन टू मेंटेन इट टू दैट, तो शायद आपने वो अचीव भी कर लिया बट यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद योर सेल्फ. यू मे बी कम्फर्टेबल नाउ विद द बॉडी दैट यू हैव. तो ये कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस फॉर वॉट, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने आप से. तो जब हमें स्पिरिचुअली ये समझ में आता है कि माई सेल्फ इज हियर, ये मेरी बॉडी है, इसको हेल्दी रखना, ब्यूटिफुल एंड क्लीन, बट देन वी गो बियॉन्ड दिस कंपेरिजन. लेकिन ये सब बच्चे नहीं कर सकते, ये पेरेंट्स को करना होगा. पेरेंट्स ने ही बच्चों को छोटी एज से टीवी भी देखने दिया, टीवी में वो एक्ट्रेस कैसे कपड़े पहनती है वही आपने बच्चे को भी खरीद दिया, बच्चे ने वो डांस स्टेप्स भी कॉपी किए, आपने सबको उसको मिलकर अप्रिशिएट भी किया, तो वो बिलीव सिस्टम तो तब बना दैट आई हैव टू बी लाइक हर और हिम. एंड देन आफ्टर 10-15 ईयर्स हम उसको कहते हैं नो रीवाइंड, नाउ यू डोंट हैव टू बी लाइक हिम और हर. इट वॉन्ट हैपन. जो 15 साल का काम हुआ है वो 15 मिनट में या 15 दिन में नहीं होगा. डोंट ट्राई एंड चेंज दैम, ट्राई एंड वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मदर्स कम से कम दिन में एक मील अपने हाथ से खाना बना के खिलाएं, इसमें बहुत पावर है. आज के बच्चों को बाहर का खाना खाके या अपने घर में कुक का बना हुआ हाथ का खाना खाके जो प्यार और शक्ति खाने में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है. दैट कैन कम ओनली इफ अ फैमिली मेंबर कुक्स फॉर द चिल्ड्रन. तो वो छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रखें, हम भी हेल्दी, बच्चे भी हेल्दी, इट विल हैपन. वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो एकदम से आज हम उनको कहेंगे एंड दे विल डू इट ओवरनाइट. हम करना शुरू करें, हम अपनी लाइफ स्टाइल में वो चीजें अडॉप्ट करें, चिल्ड्रन विल फॉलो बट एट देयर ओन.
और इनफैक्ट आज के वक्त में तो हम ये देख रहे हैं कि फादर्स आर ऑल्सो कुकिंग. यू नो
व्हाई नॉट,
सो मेनी फादर्स आर वॉन्टिंग टू डू सो मच. तो चाहे वो मदर हो या फादर, जो भी अवेलेबल है वो करता जाए, तो ग्रेजुअली यू नो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल. डॉक्टर शर्मा, अगर ये जो पूरा थॉट है कि मेरी बॉडी इमेज, और वो आज हम देख रहे हैं आई थिंक 90% ऑफ द गर्ल्स, जैसे आपने कहा, दे आर गोइंग थ्रू दिस पेन ऑफ नॉट यू नो फिटिंग इन दैट इमेज. और दूसरी तरफ जो उसका दूसरा है, जो यू नो लाइक कॉन्शियस ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, तो ये दोनों पर अगर उनका असर, उन पर कंट्रोल नहीं किया गया, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स इट कैन लीड टू?
सबसे पहली चीज है कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो हर समय आपको लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए या तो आप माइंडलेसली खाना शुरू कर देंगे, या आप बिल्कुल खाना बंद कर देंगे जो कि ज्यादातर देखने में आता है, या आप बाहर से उस एप्रिसिएशन को ढूंढना शुरू कर देंगे. और जब तक वो आपको नहीं मिलेगी, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल विद योर सेल्फ. व्हाट वी ऑल्सो फाइंड इज दैट मेनी ऑफ दीज चिल्ड्रन, स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट टचिंग लो, तो वो उस समय में या तो डिप्रेशन में जाते हैं, या उस डिप्रेशन को कम करने के लिए किसी तरह के सब्सटेंस अब्यूज में, या किसी तरह की माइंडलेस रिलेशनशिप में, जहां पे कोई व्यक्ति चाहे झूठ मूठ ही लेकिन उनको ये कह रहा है कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर लुकिंग वेरी नाइस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उसमें एंड व्हेन वी आल्सो आर सीइंग कि स्पेशली जब इनमें डिप्रेशन होता है, तो क्योंकि बॉडी की अपनी डिफेंस सिस्टम्स बहुत कम होती हैं, तो एक स्टेज के बाद बहुत जल्दी ये उस डिप्रेशन में जाते हैं. फिजिकल इलनेसेस डेफिनेटली इनमें, इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस को लड़ पाने की जो ताकत है वो इनमें कम पाई जाती है. एंड अ लॉट ऑफ देम देन स्टार्ट एक्चुअली हर्टिंग देमसेल्व्स, जिसको हम डेलिबरेट सेल्फ हार्म बोलते हैं, जिसमें कि उनको अपने आप को पेन देने की जरूरत पड़ती है जस्ट टू गेट रिड ऑफ द इमोशनल पेन दैट दे आर गोइंग थ्रू. यानी वो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है,
दे वुड लाइक टू पनिश देमसेल्व्स.
तो जिसे हम डेलिबरेट सेल्फ हार्म कहते हैं, यानी वो अपनी इमोशनल पेन को कम करने के लिए अपने आप को फिजिकल पेन देते हैं। कई बार शरीर पर नुकसान देने की कोशिश करते हैं, कटिंग करने की कोशिश करते हैं, या कई बार अपने आप को बीट करने की कोशिश करते हैं, या कई बार दे यू नो देयर इज आल्सो फाउंड दैट उनमें से कुछ जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का करते हैं बिकॉज दे आर सो फेड अप विद व्हाट दे आर सीइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, और उन्हें लगता है कि मैं शायद जो एक इमेजिन्ड स्टेट ऑफ परफेक्शन है उस तक ना पहुंच पाऊं।
तो ये पेरेंट्स को तो पता ही नहीं चल पाती ये बात, ज्यादातर शेयर करते हैं,
इमोशनल पेन तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली पता लगती है क्योंकि वो देख रहे हैं कि उसका वेट कम होता जा रहा है, और साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि वो अपने इमेज के साथ इतनी ऑब्सेस्ड है, वो शीशे में ही देख रही है, या माइंडलेसली एक्सरसाइज कर रही है, या बाहर से अपने फ्रेंड से वो कटना शुरू हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि दे आर नॉट गुड एनाफ, या माइंडलेस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या बाउट्स ऑफ डिप्रेशन में या क्राइंग एपिसोड्स में जा रहे हैं। तो ये पेन तो पेरेंट्स को दिखती है, लेकिन कई बार उस पेन को बाहरी कारणों से ऐस्क्राइब कर दिया जाता कि शायद रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए ऐसा हो गया, पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका माइंड तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ाई के अंदर है नहीं।
तो उस बच्चे को क्या जरूरत है, एक इसमें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है?
आमतौर पे मेडिसिन अनलेस कोई बहुत फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ गई हो या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई हो उसको चेक करने के बाद, या डेफिशिएंसीज शरीर में हो गई हो उनको ठीक करने के लिए देने की जरूरत पड़ती है। कुछ केसेस में जहाँ के साथ में डिप्रेशन बहुत अधिक है उसको ठीक करने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, एपेटाइट को बढ़ाने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मेन स्टे ये है उस व्यक्ति को अपनी इमोशनल पेन से फ्री करने का, उस व्यक्ति को जैसा वो खुद है उसी रूप में एक्सेप्ट करने का। शरीर के बियॉन्ड भी उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, उसमें कुछ क्वालिटीज हैं एज अ पर्सन, ये एक्सेप्ट करने का, उसको अनकंडीशनल लव देने का, उसको अपनी इमेज के साथ कंफर्टेबल बनाने का, जिसमें कि साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअल दोनों इनपुट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम सब अलग हैं लेकिन हम सब यूनिक हैं, हम सब एक रूप से परफेक्ट हैं, हम उसे बेटर कर सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए हमारे पास जो है उसको अगर हम सही रूप से यूज करें तो वही हमारे लिए काफी है। तो उस एक्सेप्टेंस के बाद फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करने का, लेकिन उसमें उस इमेज को का जो मन में उनके भ्रांति चल रही है उससे हटाकर जिंदगी की नॉर्मलसी में लाने का, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर या उस एज एप्रोप्रिएट में क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं साइकोलॉजिकली और सोशली, या हॉबीज या कोई और ऐसी चीजें जिसमें कि वो दूसरों के साथ मिलकर ये करते हैं। कई फैमिलीज में वी ऑल्सो सी कि ये चीज रोल मॉडलिंग पे होती है, वो अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी इसी तरह का बिहेवियर शायद थोड़ा कम रूप से करते देखते हैं, तो उसको भी ब्रेक करने का, क्योंकि फैमिली हैज टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट्सेल्फ, तब वो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। तो वो एक प्रोसेस है जो कि मोर ऑफ अ काउंसलिंग, मोर ऑफ अ सपोर्ट, मोर ऑफ अनकंडीशनल लव, मोर ऑफ पर्पज इन लाइफ, वो जरूरी हो जाता है वो एक लंबे अरसे के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले तक नहीं थी अभी शुरू हुई है, ये एक जिंदगी को देखने का तरीका है जिसको कि बदलने में उनकी मदद जरूरी है।
यू वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज मीडिया एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज फोकसिंग मोर ऑन गुड लुकिंग, यू नो कि हाउ यू आर लुकिंग, तो उसको बहुत ज्यादा हमें घर पे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर हम भी घर पे उसी बात को इंडोर्स करते रहे,
इनफैक्ट जो पेरेंट है, हाँ, वो जो मदर है, हाँ, वो खुद भी तो उस पीयर प्रेशर से गुजर रही है।
So if we focus as a family on becoming a beautiful person, that you already are a beautiful person, and let's focus more on being a beautiful person. And jaise aap dikhte ho, wo to waise hi beautiful hai. So you know, ghar ke culture mein, vocabulary mein, belief system mein wo agar baatein aayengi, to kyunki kahin na kahin bahuton ke saath hota hoga ki bachpan ki koi criticism किसी पेरेंट्स से या आसपास किसी से जो उसने बहुत डीप घर किया होगा अंदर जाके जिसका फिर ये इफेक्ट हो. सो वी वर नॉट कंफर्टेबल विद आवर सेल्फ एंड वी हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. तो हम उनको पीयर प्रेशर के कारण वी वांट टू मेक देम दैट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एक अलग इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों को दे रही है, उनको यही बता रही है कि उनको कैसा दिखना है. हमें घर पे वो वैल्यू सिस्टम देना पड़ेगा कि हमें कैसा as a person hona hai, because that's what makes you beautiful. So they don't know about it. Unko nahi pata. As a child, unko nahi pata ki beautiful kisko. They only knew about this. Not only about weight, what about aaj plastic surgery karani hai, parlors mein jana hai. Matlab everything happening at a very, very young age. Kahan se sikha? Badon se hi to sikha na. To kuch aur bhi sikhna hoga. वो बड़ों से ही सीखना पड़ेगा. तो स्पिरिचुअलिटी विल गिव देम दैट इनपुट ऑन हाउ टू वर्क ऑन बीइंग अ ब्यूटीफुल पर्सन. और जैसे वो उस पर वर्क करेंगे तो देन टू एक्सेप्ट योर फिजिकल बिकम्स वेरी इजी नेचुरली.
यहाँ पे जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा कि ब्यूटीफुल लुकिंग से ब्यूटीफुल बीइंग की तरह अगर हम हेल्दी हैं तो जो हम चाहेंगे अपने लिए या जो हम समाज में करना चाहेंगे उसके लिए एक अच्छे शरीर का होना जरूरी है. अच्छा शरीर एक खास तरह का जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा या बुक्स में देखा वो नहीं, लेकिन अच्छा शरीर जो आपके पर्पज को आगे बढ़ा सके, उस पैरामीटर से चलना होगा. और उसमें भी बहुत फिनिकी नहीं कि सिक्स पैक्स हो एक बॉय के या एक खास तरह की फिगर हो एक गर्ल की या कॉम्प्लेक्शन सिर्फ एक ही तरह का हो. बिकॉज वॉट वी आर ऑल्सो रियलाइजिंग इज कि उस चीज की जब अति होती है तो उसके सिर्फ साइकोलॉजिकल ही नहीं लेकिन फिजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं जिसको कि रोकना बहुत जरूरी है.
और आज हम पूरी सोसाइटी में ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अंधी दौड़ थी एक जो एक परफेक्ट इमेज क्रिएट की चाहे किसी ने भी की उस तक पहुंचने की, वो हमें कहां तक लेकर जा रही है. डॉक्टर शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. ओम शांति.
ओम शांति.
व्हेन वी कीप द इमेज of someone else's body in our mind and try to make our body to be like that, or if we have a perfect body image in our mind and our own body does not fit in that, we start creating pain. If a person does not like what he sees himself in the mirror or has gone through abuse, then he is not comfortable living in that body. Anorexia is an eating disorder where an obsession with having a thin figure and an irrational fear of weight gain does not allow a person to eat in spite of being hungry. Bulimia is an eating disorder where a person overeats and then tries to get rid of the food consumed by vomiting or excessive exercise because of fear of putting on weight. Vibrations of the food have an influence on the mind. Food cooked by the mother has vibrations of love, happiness, and blessings for the family.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660. Om Shanti.